हाँ तो प्रश्न पूछना।
वी आर वर्किंग, हम जैसे घर पे भी आपने घर पे घर का और वर्क प्लेस में वो आपका कुरुक्षेत्र है, वहीं आपको अपनी निष्ठा करने, दैट इज नॉट स्पिरिचुअल प्रॉब्लम।
बिल्कुल हाँ बोलो,
ये पूछना।
यही मैं बताता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। ये साधन सुधारने रखा है ना, ये देखो। देखो एक बात जानने की है सबके लिए, जो स्वामी जी महाराज ने बहुत ही अच्छी तरह से समझा रखा है, वो बात कुछ ऐसी है जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता। भगवान की प्राप्ति अर्थात भगवान का अनुभव किसी क्रिया का परिणाम नहीं है, कुछ करने से नहीं होता। इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ सम एक्शन। और भगवान का अनुभव कोई निर्माण नहीं है, इट इज नॉट एन इन्वेंशन, इट इज ए डिस्कवरी। एक विशेष बात जो स्वामी जी महाराज ने बहुत ही अच्छी तरह से हाईलाइट की है वो प्राचीन बात, सदा से हमारी संस्कृति में उपनिषदों के समय से ही, मुंडकोपनिषद या कौन सा भी उपनिषद है उसमें आया है, नास्ति अकृतय कृतेन। जो तत्व बना नहीं जाता किसी चीज से, वो किसी क्रिया से नहीं होता। मतलब कहने का ये है, स्वामी जी महाराज ये कहते हैं कि भगवान तो सदा हैं, भगवान तो है ही, तो प्राप्ति की प्राप्ति होनी होनी है, प्राप्ति की ही प्राप्ति। जैसे इस पलंग के नीचे मान लो 10 लाख रुपए का सोना है, तो है, बस इतनी सी बात है, मुझे पता नहीं है, पता हुआ हो गया। तो ये जो करना है, जप है, ध्यान है, ठीक है प्योरिफिकेशन के लिए, लेकिन दो तरह से होती है वो अनुभव। दो तरह के व्यक्तित्व होते हैं लोगों के, या तो विवेक थॉट और या भाव प्रेम। हर एक में दोनों होते हैं, लेकिन हर एक में थोड़ा सा एक दूसरे से ज्यादा होता है। अच्छा तो घर का जो काम कर रहे हैं, दफ्तर में, अस्पताल में, फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं, अपने लिए मानो तो फंस गए, और सेवा के लिए और कर्तव्य के रूप में मानो तो मुक्त हो गए। सिर्फ दृष्टिकोण का फर्क है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसलिए वो जो मैंने एक वो बंटवाया था जिसमें 8-10 पॉइंट लिखे हुए थे लाल, उससे शायद तुम्हें दिला हो, किसको दिया हो, उसमें एक ये बात लिखी हुई है, वो थी मेरे मन में, लेकिन स्वामी जी के फिर उसमें मिल गई एग्जैक्ट लिखी हुई। केवल कर्तव्य करने से भगवत प्राप्ति हो जाती है, और कुछ नहीं करना। ओनली बाय परफॉर्मिंग योर ड्यूटी वन रियलाइज इज गॉड, ठीक है ना। अच्छा अब इसमें एक लेख है स्वामी जी का, जिन खोजा तिन पाइया, पहले भी मैंने ये बात बताई। अब इसमें एक छोटा सा 2-3 पैराग्राफ हैं, अभ्यास और विवेचन, प्रैक्टिस एंड थॉट, डिस्क्रिमिनेशन, यही पढ़ दो इतना। अब सुनो,
अभ्यास और विवेचन। परमात्म तत्व की प्राप्ति के साधन दो प्रकार के हैं, क्रिया प्रधान और विवेक प्रधान।
दो प्रकार के पाथ्स हैं, एक वो जिनमें कुछ करना होता है और एक वो जिसमें विवेचन, विवेक। चलो,
क्रिया प्रधान साधन में अभ्यास की मुख्यता होती है और विवेक प्रधान साधन में विवेचन की मुख्यता होती है। इन दोनों में से किसी भी साधन को करें, अंत में विवेक की मुख्यता से ही परमात्म तत्व की प्राप्ति होगी।
अंत में वो असली बात विवेक से होगी, फैकल्टी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, राइट रॉन्ग के बीच में, ठीक है ना, उससे होगी प्राप्ति। चलो,
कारण की क्रिया का तो आदि और अंत होता है, पर विवेक का आदि और अंत नहीं होता। अतः परिणाम में क्रिया का तो अंत हो जाता है और विवेक तत्व बोध में पर हो जाता है। विवेचन का स्वरूप है गहरा विचार करना कि तत्व क्या है।
हाँ, विवेचन बताया क्या है, गहरा विचार करना, तत्व है क्या, फाइनल ट्रूथ व्हाट इज इट। ईश्वर से, भगवान से समझते क्या है हम, आत्मा का अर्थ क्या है।
विचार करने से जो एतत्व है,
हाँ,
उसकी निवृत्ति हो जाती है।
जो डिवाइन एलिमेंट, चेतन तत्व नहीं है, वो निकल जाएगा अटैचमेंट विचार करने से। चलो,
एतत्व की निवृत्ति होने पर तत्व ज्यों का त्यों शेष रह जाता है, अनुभव में आ जाता है।
हाँ भाई, स्वास्थ्य हमारी नॉर्मल कंडीशन है, बीमारी अगर हट जाए तो स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य कहीं से लाना थोड़ा ही है, स्वस्थ तो है ही, बीमारी हो गई, बीमारी हट जाए तो हमारा जो वर्ल्डली ऑब्जेक्ट से अटैचमेंट है, जिसको मोह कहते हैं, वो मोह अगर ना रहे तो उसको हटने के बाद जो रह गया वो भगवान है, होगी ना बात। चलो,
अतः विवेचन परमात्म तत्व की प्राप्ति का मुख्य साधन है। श्री शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, को दीर्घ रोगो भव ए साधो किम औषधम तस्य विचार एव।
हिंदी पढ़ दो।
दीर्घ रोग क्या है? हे साधो, संसार में आना जन्म मरण ही दीर्घ रोग है। उसकी दवा क्या है? विचार ही उसकी दवा है।
विचार, गहन विचार, इस बारे में विचार ही नहीं करते। विचार दुनिया के बारे में करें, 4 के 26 रुपए कैसे हो जाए, प्रमोशन कैसे हो जाए, रात दिन ये कैसे हो जाए, उसी में लगाओ आप खोपड़ी हर बार, ये वजह चलती ही नहीं रहस्य पाने को। चलो,
कारण की अविचार से ही बंधन हुआ है। विचार दो तरह का होता है, एक विचार करना होता है और एक विचार उदय होता है।
हाँ, ये अब अगली बात है। एक तो विचार होता है करना, एक विचार अंदर से पैदा होता है। पहले शुरू में करेगा हरे, ये भी बताया है, करते करते फिर वो उदय हो जाएगा। चलो,
जो विचार किया जाता है उसमें तो क्रिया है, परंतु जो विचार उदय होता है उसमें क्रिया नहीं है। विचार करने में तो बुद्धि की प्रधानता रहती है, पर विचार उदय होने पर बुद्धि से संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः तत्व बोध विचार करने से नहीं होता, प्रत्युत विचार उदय होने से होता है।
हाँ,
तात्पर्य है कि तत्व प्राप्ति के उद्देश्य से विचार करते
शुरू में तो करना पड़ेगा। तात्पर्य है कि तत्व प्राप्ति के उद्देश्य से विचार करते करते, अब आगे पढ़ो,
संसार के साथ मेरा संबंध है ही नहीं।
हाँ,
हुआ ही नहीं।
हाँ,
होगा ही नहीं।
हाँ,
होना संभव ही नहीं। इस विचार का उदय
हो जाएगा। पहले करना विचार और फिर अंदर से डेवलप हो जाएगा वो विचार। हाँ,
विचार का उदय होते ही विवेक बोध में परिणत हो जाता है।
जैसे ही वो अंदर वाला उदय हुआ, पैदा हुआ, वही विवेक जिससे सत असत, गलत ठीक, वही विवेक आत्मज्ञान बन जाएगा। देखो, विवेक के बारे में मैंने कई बार एक बात बताई, ये ऐसा फील्ड है, इसमें बात तो कहते हैं, सुनते भी हैं, जीवन बीत जा, लेकिन कब वो बात लग जाए, क्लिक हो जाए, ये नहीं कह सकते। जीवात्मा का पकड़ ले, विवेक बुद्धि से पैदा नहीं होता, बुद्धि उसका माध्यम बनती है। अगर विवेक बुद्धि से पैदा हो तो ये जो रात दिन रिश्वत लेते हैं बड़े बड़े आईएएस वगैरह, इनकी तो बहुत तेज बुद्धि है, विवेक कहाँ है? तो विवेक कहां से आता है? भगवान से। विवेक जैसे सूरज की किरण सूरज से जुड़ी हुई है, ऐसे विवेक भगवान से जुड़ा हुआ है। विवेक कब तक रहता है जीवन में? जब तक थोड़ा भी असत रहता है अंदर। असत और सत्य के बीच में डिस्टिंग्विश करने वाली फैकल्टी को ही तो विवेक कहते हैं। ठीक और गलत का डिफरेंस बताने वाला जो अंदर से रोशनी आती है उसी का नाम तो विवेक है। जिस दिन असत नहीं रहेगा, जड़ पदार्थ से जगत से अटैचमेंट नहीं रहेगा, वो ही विवेक आत्मज्ञान भगवत प्राप्ति है। पढ़ो।
अर्थात असत से संबंध विच्छेद हो जाता है और संबंध विच्छेद होते ही तत्व बोध हो जाता है।
हाँ।
विचार का उदय होने को ही गीता ने स्मृति लब्धा कहा।
हाँ।
है
स्मृति लब्धा। बाद में जब गीता समाप्त होती है तो भगवान ने उलिया तत्व वो रखी है। गीता 18वें अध्याय में 72वें श्लोक में 18वें अध्याय के भगवान ने ये पूछा, हे प्रथानंदन क्या तुमने एकाग्र चित्त से इसको सुना जो मैंने सब कुछ कहा? अब टेस्ट ले रहे हैं भगवान शिष्य का गुरु रूप में। और हे धनंजय क्या तुम्हारा ज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? मतलब भाई इतना समय हो गया, हैव यू हर्ड विद अटेंशन आई हैव सेड एंड इज योर अटैचमेंट डिस्पेल्ड? अटैचमेंट विच वॉज बॉर्न ऑफ इग्नोरेंस, दिस वॉज द क्वेश्चन इन 72 वर्स ऑफ 18 चैप्टर। ये पूछा, अब वो जवाब देता है, नष्टो मोह, मोह नष्ट हो गया, माई अटैचमेंट इज गॉन, स्मृति लब्धा, आई हैव रिगेन्ड मेमोरी। स्मृति लब्धा शब्द है, काहे की याद आ गई, समझे ना? स्वामी जी कहते हैं लौकिक स्मृति तो विस्मृति की अपेक्षा से कही जाती है, पर अलौकिक तत्व की स्मृति विस्मृति की अपेक्षा से नहीं है, प्रत्युत अनुभव रूप है। इस तत्व की निरपेक्ष स्मृति अर्थात अनुभव को ही यहाँ स्मृति लब्धा कहा गया है। वास्तव में तत्व की विस्मृति नहीं होती, प्रत्युत विमुक्ता होती है। तात्पर्य है कि पहले ज्ञान था फिर उसकी विस्मृति हो गई, इस तरह तत्व की विस्मृति नहीं होती। यदि ऐसी विस्मृति माने तो स्मृति होने के बाद पुनः विस्मृति हो जाएगी। अच्छा, जीवन आदि काल से स्वतः परमात्मा का है, उसे केवल संसार के आश्रय का त्याग करना है। अर्जुन को मुख्य रूप से भक्ति योग की स्मृति हुई है। क्या याद आ गई? अरे कहां फंस रहा हूं, ये बैठे हैं भगवान, ये ही मेरी आत्मा है, याद आ गई, समझे ना? याद आ गई, बस खत्म मामला। अच्छा, कर्म योग तथा ज्ञान योग तो साधन है पर भक्ति योग साध्य है, इसलिए भक्ति योग की स्मृति वास्तविक है। भक्ति योग की स्मृति है, क्या स्मृति है? वासुदेव भगवान है और उसका महाभाव है, ये ही है, सब कुछ भगवान है, अतः एक वासुदेव के सिवाय कुछ भी नहीं है, इसका अनुभव होना ही स्मृति लब्धा है। यह अनुभव केवल भगवत कृपा से ही होता है, इसलिए उसने क्या कहा? तत्प्रसादा, महाराज आपकी कृपा से याद आ गई, तो कृपा से होगा। वचन सीमित होते हैं पर कृपा असीम होती है। चिंतन में तो कर्तृत्व होता है पर स्मृति में कर्तृत्व नहीं है, कारण कि चिंतन मन में होता है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे अहम है और अहम से परे स्वरूप है, उस स्वरूप में स्मृति होती है। चिंतन तो हम करते हैं पर स्मृति में केवल दृष्टि उधर जाती है, तत्व में स्मृति नहीं है, इसलिए दृष्टि उधर जाते ही स्मृति हो जाती है। तो ये जो विचार उदय होना, हाँ पढ़ो जी,
विचार का उदय होने को ही गीता ने स्मृति लब्धा कहा है।
हाँ याद आ गई। अच्छा ओहो, अरे मैं शरीर नहीं हूं भाई, आत्मा हूं है? और वो आत्मा ही है परमात्मा भगवान है, मैं कहां फंस गया इस झंझट में। याद आ गई, विचार उदय हो गया। अब तुम में से अनेकों ने कई बार ये खूब पढ़ा होगा है? पर जैसे आज मैंने ये बताया, ऐसे दृष्टि गई कभी? नहीं गई ना, मुझे यही फर्क है। समझे ना, इस तरह से नहीं गई। हाँ हो गया। हाँ चलो पढ़ दो, पैराग्राफ पर।
विवेचन से विचार का उदय होता है और अभ्यास से नई अवस्था पैदा होती है। उदय होना और पैदा होना दोनों में बड़ा अंतर है। जो चीज उदय होती है वह पहले से ही विद्यमान होती है, और जो चीज पैदा होती है वह पहले से विद्यमान नहीं होती। जैसे सूर्य उदय होता है, पैदा नहीं होता। हमारी आंखों के आगे से आड़ हट जाती है तो उसको सूर्य का उदय होना कह देते हैं, और आगे आड़ आ जाती है तो उसको सूर्य का अस्त होना कह देते हैं। जिस जगह से सूर्य का उदय होना दिखता है उसको उदयाचल कहते हैं, और जिस जगह से सूर्य का अस्त होना दिखता है उसको अस्ताचल कहते हैं। वास्तव में प्रत्येक जगह ही उदयाचल और अस्ताचल है। ऐसे ही अविचार अज्ञान की आड़ हट जाती है तो उसको विचार का उदय होना कहते हैं। वास्तव में अज्ञान है नहीं, तभी वह मिटता है। अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं है, प्रत्युत विवेक का अनादर करना, जाने हुए को महत्व न देना ही अज्ञान है।
बस देखो एक बात बतलाऊं, जितना समय शक्ति लगन लगा करके आप लोगों ने ये MBBS, MD, MS या किसी ने इंजीनियरिंग या जो कुछ भी या कोई व्यापार ये किया है, इतनी लगन शक्ति लगा कर समझने की कोशिश करी कभी इसको? ईमानदारी से बताओ, इतनी इतनी नहीं करी ना। और ये है तुम्हारी ये MD, PhD से बहुत ऊपर, समझे ना। ये तो खेल खिलौने रोटी खाने का इंतजाम है, और जो पक्की तरह से आध्यात्मिक आदमी होता है ना, चाहे वो डॉक्टर बन जा, चाहे वो साइंटिस्ट बन जा, और चाहे वो चपरासी बन जा, अश्वीवर बन जा, एक सा ही है उसके लिए। अरे रोटी खाने का जरिया है, उसमें रखा क्या है? ऐसे खा ले, उससे खा ले, उसमें रखा क्या है? रोटी खाई और इस शरीर में जो असली काम है वो कर लिया, चाहे वो रैदास हो चमार, चाहे वो पलटू हो, क्या हुए हैं वो, ऐसे ही वो कसाई हो, सदना क्या नाम था, क्या नाम,
सदन
कसाई। अरे यार जिस राम से भजन मिल रहा, भजन असली काम तो कर लो, समझे। अच्छा तो भाई वो असली काम, अब असली काम सारी जिंदगी तो मान रखा है पैसे कमाना या कैरियर बनाना। ज्यादातर तो ऐसा है भाई, पहले तो बहुत कम संख्या इधर की तरफ मुड़े बहुत जन्मों के बाद, लेकिन जो मुड़े भी हैं वो भी असली काम दूसरा रखे हैं। जैसे मैं बहुत दफा पहले क्या करता था, हॉबी क्लासेस हुआ करें यूनिवर्सिटी में, एक जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, सब यूनिवर्सिटी में हो, यूनिवर्सिटीज में एक हॉबी क्लासेस हो, सब्जेक्ट तो पढ़ना है फिजिक्स, एक हॉबी क्लासेस का कमरा हो, जब कुछ टाइम नहीं रहा मैं जैसे सितार बजाने हॉबी क्लासेस पहुंची भाई कहाँ से आ रहा, हॉबी क्लासेस में आ रहा हूँ ना, तो सितार ही सीख सके, मतलब टाइम पास, ऐसे हॉबी क्लासेस बना रखी है ये। जब कोई धंधा नहीं रहा नहीं, चलो थोड़ा सा स्वामी जी के पास सुनिया क्या कहें, थक थका करके शाम को वहीं जा बैठ जाऊँ, क्या क्या कह रहे हैं, क्योंकि अंदर ये तो रह गई है, अगर यार मरना तो पड़ेगा, मौत का डर, मौत से पहले कुछ बात होती होगी तो बैठ जाए ठीक ठाक, भैया ऐसे कैसे हो जाएगा। खैर ज़्यादा ना ये कहूँ, चूँकि नींद वींद आ जाती है रात को, ज़्यादा हड़कंप ना मचे। तो काफी अच्छी बात आ गई आज।
गुरुदेव भाई ये थोड़ा ज्ञान
हाँ हाँ
नहीं, मैं ये कह रहा था कि जैसे हम जब कर्म करते हैं
हाँ
तो भगवान को सौंप के करें
बस
और कुछ ये
बिल्कुल बहुत बढ़िया काम
विचार नहीं होता
है ना। भगवान भगवान का काम है। अगर ये भाव आ गया कि भगवान का काम कर रहा हूं तो बस साधना हो गई। जो पेशेंट मेरे सामने है वो भगवान है, कहना नहीं ना सिर पर चढ़ जाएगा वो। एक बात ध्यान रखना, ये सब अंदर का मामला है, व्यवहार और तरह से करना। मैंने भी बहुत बात भुगती है जीवन में, थोड़ा सा एक्सप्रेशन दे दिया खोपड़ी पर चढ़ गया आदमी बिना मतलब के। अच्छा फिर लिखा मिला, अनुभव से भी सीखा पर लिखा मिला। ये अंदर रखना आपने, बाहर तो व्यवहार वैसा ही करना है जैसा उस परिस्थिति में उचित है। डांटना भी है, ये भी करना है, वो सब काम करना, अंदर रखना है। तो अगर इस भाव से कर रहे हैं हम सेवा तो ये साधना हो गई और इससे काम बन जाएगा। ये खूब कह रखा महाराज ने अनेक लेखों में, होगी ना बात। बस रास्ता तो दूसरा है, ये है बात। चलो ठीक हो गया। कोई देर नहीं हुई अभी, जाग जाओ, पर जागो पूरा जितना दम हो, क्योंकि ये कुछ नहीं कह सकते किस दिन वारंट आ जा। जैसे स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई जन्म होने के बाद क्या क्या होगा ये तो पता है नहीं, है क्या क्या सुख दुख, कौन सी परिस्थिति आएंगी, क्या हो जाएगा, क्या बनेगा जीवन में, क्या कुछ पता नहीं। वो कहते हैं पता हो जाओ तो फायदा भी कुछ नहीं, बदलाव जाने का नहीं, वो वैसे ही होगा प्रारंभ। एक बात की गारंटी है, मरेगा। और मरने से पहले ये काम हो जाए, ये बात। और सीधा रास्ता है ये, इससे बढ़िया रास्ता ही कुछ नहीं। जो काम कर रहे हैं वही, अपना काम माना फंसे और भगवान की सेवा मानी, काम बन गया। भगवान की सेवा का तो इस तरह आ गए ऊपर। अरे ड्यूटी के रूप में नहीं कर रहे लोग, मैंने बेहद ही समझाया वर्षों। चार स्टेजेस हैं, पहली स्टेज नहीं कर रहे, कर्म की बात बता रहा हूं। पहली स्टेज क्या है, निषिद्ध काम मत करो, यहां से शुरू होता है। टेस्ट की जरूरत नहीं है पेशेंट को, जो लिख रहा है तुझे करोड़ जन्म में भी नहीं होने का कुछ भी, दुर्गति होगी तेरी, निषिद्ध काम में फंस रहा। ठीक है, बिगनिंग तो यहां से है ना। निषिद्ध काम नहीं करेंगे, अगर गलत काम नहीं करेंगे तो ठीक काम अपने आप होगा। तो सकाम कर्म कर रहे हो, सकाम कर्म भी भाई तनख्वाह लेते हैं काम करते हैं, ये उससे तो अच्छा है जो रिश्वत की इंतजार में बैठा रहे, वो तो निषिद्ध काम कर रहा है। सकाम कर्म कायदे में, फिर आएगी निष्कामता, सेवा, सेवा भाव। सेवा के बाद फिर पूजा का स्तर आ जाएगा अंदर, जो 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में तुम्हें खूब लिखवाया गया है। यत प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्चय सिद्धिं विन्दति मानव। 18वें अध्याय का ये तुम्हारा जो प्रश्न है इसका जवाब ये दे रखा भगवान ने, मैं ही नहीं बता रहा कोई ऐसी अपनी मर्जी से। 18वें अध्याय का 46वां श्लोक है, बहुत ही बतलाया मैंने सारे जीवन शोर मचा मचा करके। जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति अर्थात उत्पत्ति होती है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। सिद्धि यहां एक एक गीता में भगवान का अनुभव 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में दे रखा। इसकी कॉमेंट्री जिसको पढ़नी हो पढ़ लेना, बहुत अच्छी दी है महाराज ने। कुछ नहीं करना इसके अलावा, बिल्कुल काम बनेगा। एक दूसरी बात बहुत दफे बताई है, अब जितना बोल रहा हूं कहीं जो मुझे अंदर से कुछ निकटता से वो यूं कहेंगे बोलो तो मत, अब बिना बोल दे कैसे। अच्छा ऐसी बात हो रही है जैसे वो एक पहले टीवी में सीरियल आया करता था, क्या था विक्रम बेताल, जन क्या था वो विक्रम बेताल, वो आता था पहले और मेरे प्रश्न का उत्तर भी और बोला तो सिर तोड़ दूंगा। मेरी स्थिति भी ऐसी होती जा रही है, बिना बोले तो बताऊं कैसे, विक्रम बेताल होता जा रहा मन में। अच्छा बोलूं तो गला खराब हो जाएगा, फिर वो कहेंगे आपने क्यों बोले, बड़ा किस्सा हो गया भाई। चौथे अध्याय के 38वां श्लोक पढ़ना, इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। ज्ञान की बात कह दी, अब दूसरी पंक्ति में रहस्य, जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है, योग माने कर्म योग, यहां पर कॉमेंट्री पढ़ लेना, वह कर्मयोगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। इसमें डेफिनेट है रियलाइजेशन, इस पाथ में ये तक दिख रखा है कि कोई हेल्प ना करे तब भी हो जाएगा, ये मतलब। चलो अब विक्रम को चुपाना चाहिए नहीं तो बेताल सिर फोड़ लेगा।
आपने बताया था भूरी भाई बर्तन भांजते भांजते,
हाँ हाँ बिल्कुल 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 ऐसी हो। अच्छा भाई टाइम तो आज ज्यादा ही हो गया, आज तो विक्रम ज्यादा ही बोले।